ओम शांति। विदेश का एक यात्री भारत में आया और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा जहां किसी इमारत का निर्माण हो रहा था और वहां बहुत सारे मजदूर थे और वो विदेश का यात्री पहले मजदूर के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर कठोर पत्थर तोड़ रहा हूं। बहुत क्रोध करता है और कहता है इतना दिन भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, किस्मत ही फूटी है। वो विदेश का यात्री दूसरे मजदूर के पास जाता है, वो भी थोड़ा उदास सा दिखता है और उसको भी वो पूछता है कि तुम क्या करते हो। वो कहता है मैं अपनी आजीविका कमाता हूं, घर में बीवी है, बच्चे हैं, उनका पेट भरना पड़ता है, अगर मैं नहीं कमाऊं तो वो भूखो मर जाएंगे। और कैसे वैसे इस जीवन का बसर कर रहा हूं। वो विदेश का यात्री तीसरे मजदूर के पास जाता है और वो तीसरा मजदूर खुशी से झूम रहा है और गा रहा है और पत्थर तोड़ रहा है। उसको वो यही प्रश्न पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो तीसरा मजदूर कहता है मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं। कार्य एक ही है पर कोई कठोर पत्थर तोड़ रहा है, कार्य एक ही है परंतु कोई आजीविका कमा रहा है, कार्य एक ही है परंतु कोई खुशी से झूम रहा है, खुशी से गा रहा है। वो विदेश का यात्री लौट जाता है, बहुत बहुत वर्षों के बाद फिर आता है, उसी स्थान पर आता है और ढूंढने लगता है उन तीन लोगों को जिनसे वो मिला था। वो पहले से मिलता है, वो अब भी वही है, कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन चालू है, कोई दूसरा निर्माण कार्य चालू है, वहां पर भी अब भी पत्थर ही तोड़ रहा है, अब भी वही क्रोध, अब भी वही आवेश, अभी वही आक्रोश, वही संताप, अभी भी चेहरे की भाव भंगिमा वही, पत्थर तोड़ रहा है। वो दूसरे मजदूर को देखता है, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। वो पूछता है वो कहां गया, तो पता चलता है वो अब साहूकार बन चुका है, क्योंकि आजीविका कमा रहा था उस समय, पैसे इकट्ठा कर रहा था उस समय, पैसा इकट्ठा करते करते इतना धनवान बन गया, इतना धनी बन गया कि अब वो साहूकार बन गया है। अब उसे पत्थर तोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए दूसरे पत्थर तोड़ रहे हैं। वो विदेशी यात्री उस तीसरे मजदूर को ढूंढने लगता है, वो कहां होगा। कोई अनुमान, वो कहां होगा। वो जो तीसरा था जो झूम रहा था और गा रहा था, वो कहां गया होगा। क्या हो गया होगा, मंदिर का पुजारी, मंदिर की मूर्ति, और वो विदेश का यात्री उसे ढूंढता है और वो व्यक्ति जो तीसरा था वो आध्यात्मिक गुरु बन चुका है। अब वो आत्माओं का मार्गदर्शक करता है, मार्गदर्शन करता है, اب وہ نہ پتھر توڑتا ہے نہ پیسے کماتا ہے، پرنتو اب اس کا جیون بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے، فار دا گڈ آف مینی فار دا ویلفیئر آف مینی۔ آتمانو موکشارتھم جگت ترتیائے چ، آتما کی مکتی کے لیے اور سنسار کے کلیان کے لیے ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امرت ویلے سے لے کر رات تک پتھر توڑ رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، یا جھوم جھوم کر ناچ ناچ کر گا رہے ہیں؟ یدی جیون میں وہی کرم چالو ہے جو اب تک چالو تھا، اور جیون میں وہی سب کچھ کر رہے جو اب تک کر رہے تھے، تو اس جیون میں کوئی آشا کی کرن پرفلتا آلہاد نہیں ہوگا، جیون نرس ہوگا، جیون ویرس ہوگا، جیون بورڈم ہوگا، کیونکہ ایسے جیون میں جہاں کوئی نوینتا نہیں، وہ جیون ایک دن اب جاتے ہیں ہم اس سے۔ تو کیا ہم کرے کہ جس سے جیون میں امنگ اتساہ رہے؟ آج کی مرلی بابا نے کہا امنگ اتساہ پنکھ ہے، اس پنکھ سے تم چڑھتی کلا میں اڑتی کلا میں چلے جاتے ہو، جیسے کوئی ایروپلین، جیسے کوئی ایروپلین آکاش میں چلا جاتا ہے، گروتواکرشن شکتی سے مکت ہو جاتا ہے، دھرنی کے آکرشن سے مکت ہو جاتا ہے، گریویٹیشنل فورس سے مکت ہو جاتا ہے، ویسے ہی تم بھی نو ورش میں امنگ اتساہ کے پنکھ لگاؤ اور اڑو، ویسے ہی اس نو ورش میں اپنے جیون میں نوینتا لانی ہے۔ ساکار اور آکار روپ میں باپ دادا بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کرے کہ جیون میں صبح سے لے کر رات تک ہماری استھتی اس پہلے مزدور کی طرح نہ ہو جو کیول پتھر توڑ رہا ہے، نہ ہی اس دوسرے مزدور کی طرح جو کیول کیول کمائی کر رہا ہے، انکم کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور بس ہماری استھتی رہے اس تیسرے مزدور کی طرح، جس کے لیے وہ کرم، وہ کاریہ، وہ کریا، وہ ایکشن، وہ ڈیڈ، وہ ورک انجوائمنٹ ہے، خوشی ہے، آنند ہے، آلہاد ہے، سنگیت ہے، گیت ہے، ناد ہے، سر ہے۔ بابا نے کہا یہ وچتر، یہ روحانی ہائیسٹ اور ہولیسٹ دربار ہے، اور نیا دربار ہے۔ کتنی نوینتا کی باتیں کی ہے یہ مرلی ہے 31 December 1984۔ شام کو بابا آئے، رات کو 12 بجے، اور صبح تک جب نیا دن ہوا 1 January 1985۔ 1984 84 کی مرلی ہے، 84 وہ ورش تھا جہاں پر پورے بھارت میں ہلچل تھی، سکھ رائٹس ہوئے تھے، تب مرلی چلی تھی، بھوپال گیس ٹریجڈی تب مرلی چلی تھی، کچھ سمے کے بعد ہزاروں لوگ مر چکے، 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بھوپال سائنائڈ ٹریجڈی گیس کانڈ پربھاوت ہوئے تھے، ایسا ہلچل کا وایو منڈل، ایسا ہلچل کا واتاورن کا یہ ورش تھا 84۔ وہ ورش پورا ہو رہا ہے تب یہ مرلی چل رہی ہے 84 میں۔ تو کون کون سی نئی چیزیں بابا نے کہی؟ یہ نیا ورش ہے، تم وشو پریورتک نئے ہو، نئے وشو پریورتک تم نئے ہو، وشیش آتمائیں ہو، یہ پریوار نیا ہے، یہ امنگ اتساہ نیا ہے، یہ ورش نیا ہے، یہ جیون نیا ہے، یہ دن نیا ہے، نئی دنیا لا رہے ہو، نیا راجیہ لا رہے ہو، سب کچھ نوین ہی نوین ہے تمہارا، پرانا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بابا نے کہا اس ورش باپ دادا تمہیں روحانی آشیرواد اور روحانی بدھائی دیتے ہیں۔ کس بات کی بدھائی؟ بدھائی ان کو ملتی ہے جو پرانے کو سماپت کر دیتے ہیں، جو پرانے کو ودائی دیتے ہیں۔ پرانی یادیں، پرانی باتیں، پرانی دیہ، پرانا سنسار، پرانی بھولے، پرانی غلطیاں، پرانے پاپ، پرانے وکرم، اب ان سب کو فل سٹاپ، اب اس سب کو پورن ویرام۔ نئے ورش میں سب کچھ نیا، نیا امنگ، نیا اتساہ، نیا ملن، نیا پریوار، نئی خوشی، نیا امرت ویلا، نیا گیان، نیا یوگ، نئی سیوائیں۔ سیواؤں میں بھی نوینتا لاؤ، بابا نے کہا۔ کون سی نوینتا لائیں گے؟ جو دنیا والوں نے یہ تو بہت سن لیا، میلے بہت کر لیے، پردرشنی بہت کر لیے، کورس بہت کرا دیا، سپتاہ کورس بہت کرا دیا۔ اب کیا کرو؟ دنیا والوں کو یہ انوبھو ہو کہ نئے دنیا کی جھلک دکھے، نئی دنیا آ رہی ہے، یہ ان کو انوبھو ہو۔ ایسی نوینتا لاؤ، نئی سرشٹی کی لہر پھیلاؤ۔ کیسے کیسے واقعے آج کی مرلی میں، تو نوینتا لانی۔ اور بابا نے وردان بھی دیے مرلی میں۔ کون سے؟ تین وردان دیے ہیں مرلی کے اندر۔ سبھی نے مرلی سنی نا ابھی ابھی۔ کون سے وردان ہے؟ سدا ساتھ، سدا سمیپ، اور سدا دل تخت نشین کے نشے میں رہو۔ سدا ساتھ، سدا سمیت۔ جیون میں جو پرانا پن ہے، جیون میں جو اولڈنیس ہے، وہ سماپت ہو جائے اور نوینتا آ جائے۔ ہر بات میں نوینتا، سیواؤں میں نوینتا، یوگ میں نوینتا، دنچریا میں نوینتا۔ اگر وہی 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 کرتے رہے، کب تک کریں گے؟ وہی دنچریا، وہی ڈپارٹمنٹ، وہی لوگ، اسی طرح کے سمبندھ جو اب تک چل رہے تھے۔ کیا کرے جو سب باتوں میں نوینتا آ جائے؟ تو آج کی مرلی نئے ورش کی مرلی ہے، اور بابا نے اس میں اور بھی دو تین باتیں کہی۔ سنسار کے لوگ نیو ایئر مناتے ہو، تم بھی مناتے ہو، کیا انتر ہے؟ کیا انتر ہے؟ سنسار کے لوگ بھی سیلیبریشن کرتے ہیں نیو ایئر کا، وہ لوگ اور تم لوگ بھی کرتے ہو، دونوں میں کیا انتر ہے؟ وہ ہاں، تین چار باتیں یہاں کہی بابا نے۔ سب سے پہلا، وہ منشیوں کے ساتھ مناتے ہیں، اور تم کس کے ساتھ مناتے ہو؟ سوئم جو ورداتا ہے، سوئم جو وشو کا نیتا ہے، بھاگیہ ودھاتا ہے، اس کے ساتھ تم نیو ایئر مناتے ہو۔ یہ پہلی بات۔ ان کا وناشی ہے، تمہارا اوناشی ہے۔ تیسرا، وہ لوگ مناتے نہیں، گواتے ہیں، اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ورداتا سے ٹوکریاں بھر بھر کے وردان لیتے ہو، جھولی بھرتے ہو وردانوں سے۔ اور ان کا ہے ہیپی نیو ایئر، اور تمہارا ہے ایور ہیپی نیو ایئر۔ کسی بھی دکھ کی گھٹنا کا تم پر پربھاؤ نہیں، اویکت مہاواکیہ ہے، دکھ کی گھٹنا کے پربھاؤ سے پرے ہو تم۔ تم سکھ کے ساگر ہو، ماسٹر سکھ کے ساگر۔ دکھ کی گھٹنا ہو گئی، پرنتو تم اپنی خوشی میں رہتے ہو۔ اس سنسار میں ایسا کچھ نہیں جو تمہیں دکھی کر دے، کیونکہ تمہیں سکھ کا ساگر ملا ہے۔ اور یدی دکھی ہو رہے تو ضرور اس سکھ کے ساگر سے سمبندھ کم رکھا ہے، اگر دکھی ہو رہے تو ضرور اس سکھ کے ساگر سے دور ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، اور کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، اور ایک ویکتی بہت دور بیٹھتا ہے اور وہاں پر چلاتا ہے کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور جو آگ کے سمیپ بیٹھے ہیں وہ شانتی سے بیٹھے ہیں، انہیں کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، پر جو دور ہے वो चिल्लाता है और कंप्लेन करता है कि मेरा क्या दोष, मैंने क्या पाप किया, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही थी। अरे ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि तुम दूर बैठे हो, महफिल में आए हैं शिव क्षमा, उसके समीप आ जाओ। कोई व्यक्ति अपने आंखों पर हाथ रखता है और चिल्लाता है अंधेरा 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 मुझे बचाओ, चिल्लाता है जोर जोर से, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, आंखों पर अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे पट हाथ किसने रखे, हटाओ। कोई व्यक्ति घर पर बैठा है और चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए पानी चाहिए, बाहर बारिश हो रही है, भीगो, प्रभु प्रेम की वर्षा इस समय हो रही है। तो संसार में भी नया वर्ष है, यहां भी नया वर्ष है, पर अंतर है। बाबा ने कहा नवीनता, नवीनता लानी है। और बाबा के पास हम बच्चों का क्या क्या पहुंच गया, उमंग उत्साह पहुंचा, और क्या पहुंचा, बच्चों ने जो शुभ भावना शुभ कामनाओं से जो प्रतिज्ञाएं की वो प्रतिज्ञाएं भी बाबा के पास पहुंची। हमारे हर संवाद में बाबा पार्टिसिपेट करता है, जो जो हम उससे बात करते हैं, क्या वो सभी बातें वो सुनता है कि नहीं सुनता है, फिर करता तो कुछ नहीं, ऐसा आत्माएं कहती है। बाबा कभी हिस्ट्री हॉल में आए थे, एक बड़ा अनन्य भाई था, उसने बाबा से सीधा ही पूछा, बहुत पुरानी बात, बाबा मैं आपसे रोज अमृत वेला बात करता हूं, आज तक आपने एक भी जवाब नहीं दिया। अव्यक्त बाप दादा से पूछा नहीं, आरोप लगा दिया सीधा कि बाबा मैं आपसे इतनी बातें करता हूं, इतने प्रश्न पूछता हूं रोज, एक भी जवाब आपने नहीं दिया। क्या उत्तर होगा बाबा का, बाबा घुमा भी नहीं सकते, सामने पूछ रहा है और भीड़ भी नहीं है, एक एक को आधा आधा घंटा है बात करने के लिए। एक वो भी समय था, एक वो भी समय था। एक बार अव्यक्त बाप दादा आए हिस्ट्री हॉल में, भाइयों को लगा माताएं मिल रही है, हम थोड़ा भोजन करके आते हैं, और भाई भोजन करने चले गए। माताएं भी कब तक मिलेगी बाबा से, क्या बात करेगी, बात कर करके माताएं भी चली गई, बाबा अकेले बैठे हिस्ट्री हॉल, कोई भी नहीं, कोई तो आए मेरे से बात करे। एक ये भी समय था, और एक वो भी समय आया बाद में कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ और स्टेज पर जाने के लिए मुश्किल, और अब ये भी समय है कि केवल रिकॉर्डेड वीडियो देखा जाता है, दिखाया जाता है। तो उस भाई ने प्रश्न पूछा, बाबा मैं इतना पूछता हूं आपसे, कुछ नहीं करते हो आप, क्यों उत्तर नहीं देते। बाबा ने अच्छा उत्तर दिया, बाबा ने कहा बच्चे बाप से प्रश्न पूछे और बाप उत्तर न दे ये हो नहीं सकता, परंतु बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। बच्चे बाप से प्रश्न पूछे और बाप उत्तर न दे ये हो नहीं सकता, परंतु क्या बुद्धि की लाइन ही क्लियर नहीं, ट्रैफिक जैम, नहीं तो उसकी तो प्रतिज्ञा है जो मेरे प्रति अर्पित हो जाए, योगक्षेमं वहाम्यहम्, हे अर्जुन उसका सब कुछ सारा कार्यवहन मैं करूंगा। नमे भक्त्या प्रयश्यति, मेरे भक्त का मेरे प्रेमी का कभी विनाश नहीं हो सकता, जो मेरी शरण में आ जाए। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ, वो कहता है हम कैसे सुनाए, लोग पहले ही तुम्हारे विरोधी है, हमको मारेंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको ही नहीं छोड़ा तो क्या हमको छोड़ेंगे, वो कहता है जाओ कुछ नहीं होगा, यूअर वेरी हेयर इज काउंटेड, तुम्हारे सिर पे जो बाल है ना एक एक गिना हुआ है, एक भी कम नहीं होगा, यूअर वेरी हेयर इज काउंटेड। जाके रखे साइया मार सके ना कोई। तो जीवन में नवीनता। तो बाबा ने कहा बच्चों का उमंग उत्साह बाबा तक पहुंचा, बच्चों ने जो प्रतिज्ञाएं की वो भी बाबा तक पहुंची। ऐसी सभा में, ऐसे दरबार में, ऐसे हाईएस्ट होलीएस्ट श्रेष्ठ रूहानी नए दरबार में बाप दादा आए हैं। मुरली नवीनता पर है, जब तक स्वयं में नवीनता नहीं तब तक दूसरों को भी नवीनता का अनुभव नहीं करा सकेंगे। तो हम चर्चा करेंगे अभी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें नवीनता लानी है। पहले कुछ दिनचर्या की बातें और फिर कुछ सूक्ष्म बातें। दिनचर्या की ऐसी 8 से 9 बातें हैं जिसमें नवीनता लानी है। सबसे पहली नवीनता है अमृत वेला। जो योग का प्रयोग कल किया था वो आज न हो, जो कमेंट्री कल रात थी वो आज सुबह ना हो, हर दिन की नई कमेंट्री हो, हर दिन नया योग का प्रयोग हो। बीच में कई महीनों और कई लंबे समय तक हमने एक प्रयोग किया था, उठते ही जो रोज की मुरली का वरदान है उसको पढ़ लेते थे और फिर योग करने जब पांडव भवन जाते तो उसी को कमेंट्री में रूपांतरित कर देते, उसी वरदान को योग में परिवर्तित कर देते। उसमें कुछ भी आ जाए, जैसे कुछ दिन पहले था तुम एक संगम योग, क्या है, टॉप का पॉइंट है, वहां बैठकर तुम सब कुछ देख सकते हो, वहां बैठकर तुम फलक से कहो कि हम ही देवता थे, हम ही देवता बनेंगे। तो एक अमृत वेला पूरा उस टॉप के पॉइंट पर बैठकर, जो जो वरदान मुरली में आए सुबह पढ़ लेना, फिर पांडव भवन पहुंचते और पहुंचते पहुंचते ही उसकी कमेंट्री तैयार करना और फिर वहां जाकर उसका प्रयोग करना। हर दिन अमृत वेला नया हो, अमृत वेला नवीन हो, नहीं तो अमृत वेला कई लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, उनको पूछो क्या कर रहे हो, कठोर पत्थर तोड़ रहे हैं, उठना पड़ता है जबरदस्ती। और कई लोग केवल कमाई कर रहे हैं, बस हमारी कमाई हो जाए, याद की कमाई, थोड़े से विकर्म विनाश हो गए, अच्छा है पहले से तो ठीक है, कमाई कर रहे हैं, इनकम। पर सबसे अच्छा क्या है, अमृत वेला चेतना झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, प्रभु के संग में है, ये टॉप मोस्ट अवस्था है। वहां ये भी भान नहीं है कि मेरी कमाई हो रही है, वो सब कुछ अपने आप हो रहा है, वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। बाबा ने कहा है अमृत वेला बाप के साथ पिकनिक करो, स्मृति का स्विच ऑन करो, डबल रिफाइंड पेट्रोल भरो और उड़ान भरो, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, बाप के साथ पिकनिक करो, सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में विश्व भ्रमण करो, अलग अलग प्रयोग करो। कभी शांति स्तंभ के लिए बाबा ने कहा था, अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, एक समय आएगा जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे, बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा, स्वयं भगवान तुम्हारी परिक्रमा करेगा जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे। तो सबसे पहली नवीनता लानी है अमृत वेला। अमृत वेला हर दिन नया हो, नया उमंग हो, नया उत्साह हो, आंखें खुल जाए जैसे कौन आया है सुबह सुबह, ये कौन आया, चेतना उड़ने लगे उस अनंत आकाश में। इस संसार से परे, इस आवाज से परे, इस भीड़ से परे, इस देह से परे, इन तत्वों से परे, यहाँ के संबंधों से परे, चेतना का वो जगत, मणियों का वो आकार, वो बेआवाज दुनिया, वो मौन आत्मा को खींचे, शरीर से वैराग, आवाज से वैराग, सांसारिक इच्छाएं और तृष्णाओं से वैराग। क्या ऐसा अमृत वेला हो रहा है? यदि नहीं तो शायद हम पत्थर तोड़ रहे और 10 साल के बाद भी पत्थर ही तोड़ते रहेंगे, या 10 साल के बाद कोई साहूकार बन जाएंगे। बस वो तीसरा मजदूर, आध्यात्मिक उपदेशक, आध्यात्मिक जगत की चेतना बन गया, जिसके अस्तित्व मात्र से आत्माओं में बल भरता था। और उसने क्या किया? कुछ और नहीं किया, बस अपना ही नित्य कर्म करता रहा। महाभारत में वर्णन है, महाभारत ग्रंथ में, एक सन्यासी तपस्वी किसी पेड़ के पास, पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। कई वर्षों तक तपस्या की, कई वर्षों तक। और फिर एक दिन जब उसने तपस्या करने बैठा था, कोई दो पक्ष उसी झाड़ के ऊपर आए और उन्होंने उसके शरीर पर विष्ठा गंध डाली और उसने आंख खोली और इतना क्रोधित हो गया और क्रोध में उसने उन पक्षियों को देखा, उसकी आंखों से अंगार निकली और वो दोनों पक्षी जल के भस्म हो गए। और उसे इतनी खुशी हुई कि मैंने भी कुछ प्राप्त कर लिया, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, हम भी कोई छोटे मोटे योगी नहीं रहे, अब कुछ सिद्धि मिल गई। और उसने सोचा अब तपस्या पूरी हुई, गांव में आया, एक घर के सामने खड़ा हुआ, भिक्षाम देही साधु है, अंदर से कोई आवाज नहीं। फिर कहता है भिक्षाम देही, अंदर से कोई गृहिणी कहती है रुक जाओ, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं। वो फिर कहता है भिक्षाम देही, कोई आवाज नहीं। कई देर तक रुकता है और फिर क्रोध आने लगता है। और जब वो गृहिणी अंदर से बाहर आती है, इतना क्रोधित हो जाता है, इतना देर इंतजार कराया, तो वो गृहिणी कहती है तुम्हें ज्यादा क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं, मैं कोई वो चिड़िया नहीं जिसको तुम जला कर आए हो। वो कहता है अरे तुमको कैसे पता? ये तो सिद्धि है, जो ये पता कर लेना कि दूर कहीं क्या हुआ, दूर श्रवण, दूर जिसको कहते हैं क्लायर ऑडियंस एंड क्लायर वायंस, दूर का सुनना, दूर का देखना, दूर दर्शन और दूर श्रवण। वो कहती है मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने केवल अपने पति की सेवा की बस, और ये करते करते ही मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई जो तुमने वहां बैठकर प्राप्त की। और फिर वो गृहिणी उसको कहती है जाओ यहां पर एक कसाई है व्याध, उससे जाकर सीखो कुछ। और वो वहां जाता है और वो व्याध उसको बहुत सारी बातें सिखाता है। उसको महाभारत में कहा है व्याध गीता, गीता व्याध गीता भी एक है। तो ये उदाहरण है जो ये दिखाता है कि व्यक्ति केवल अपना कर्म कर रहा है परंतु पूर्ण निष्ठा से कर रहा है, तत्परता से कर रहा है। वो जो तीसरा मजदूर था उसने कोई साधना नहीं की, वो जो कर्म करता था उसी को खुशी खुशी से करता था, इस भाव से करता था कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये भगवान का मंदिर बना रहा हूं। इसलिए वो ऐसी प्रेरणा और शक्ति बन गया। हम जो कार्य कर रहे वो नई सृष्टि का निर्माण कर रहे, इस भाव से हर सेवा करनी है। बाबा ने कहा ये नवीनता लाओ, ये नवीनता का अनुभव कराओ आत्माओं को कि नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है, नई सृष्टि की लहर। तो सबसे पहली नवीनता लानी है किसमें? अमृत वेला। उसको ठीक करना है, रिपेयर करना है, मरम्मत करनी है अमृत वेले की। बहुत लीकेज है, क्रैक है। दूसरा नवीनता, मुरली। मुरली में क्या नवीनता लाएंगे? केवल सुन लिया और चले गए। भागवत में दिखाया गोपियां जब मुरली सुनती थी तो क्या होता था उनको? क्या होता था? कोई काजल लगा रही है तो काजल इधर, पानी भर रही है तो पानी बाहर, भोजन बना रही है तो भोजन बर्तन से उबलते हुए बाहर, दूध गिर गया, श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार कहीं के कहीं, शुद्ध बुद्ध सब बिसरी। ऐसी हालत हो जाती थी। वो कोई काठ की मुरली नहीं थी, वो ये मुरली है, और वो गोपी वल्लभ की गोपिकाएं हम हैं। तो उसकी जो वाणी है, उसकी जो मुरली है, उसमें जो तान है, वो बहुत मधुर है। और हमने कितना उसको समझा है। भागवत में गोपिका गीतम है, जिसमें गोपियां कृष्ण से कहती है तव कथामृतम, हे गोविंद तेरी जो कथा है, तेरी जो वाणी है, तेरी जो मुरली है, तेरी जो बातें है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है, विकारों में तप रहा है, पर तेरी जो वाणी है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना। हे मुरली मनोहर, तेरी जो वाणी है श्रवण मंगलम, केवल सुनने से मंगल होता है। कवि विरडितम, कवियों ने, श्रेष्ठ योगियों ने, महान आत्माओं ने, तपस्वियों ने जिसका गायन किया है, भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना, सारे जगत का जो कल्याण करने वाली है तेरी वाणी, ऐसी तेरी वाणी तव कथा अमृतम, अमृत है मुरली, अमृत की धारा जो देती दिलों को सहारा। मुरली में नवीनता लानी है। क्या नवीनता लानी है? मुरली में नवीनता लानी है चिंतन की नवीनता, मुरली में नवीनता लानी है मनन की नवीनता, मुरली में नवीनता लानी है लिखने की नवीनता, मुरली में नवीनता लानी है अध्ययन की नवीनता, पढ़ने की नवीनता, मुरली में नवीनता लानी है मुरली की चर्चा। आपस में क्या करना है? मुरली की चर्चा। एक छोटा सा ग्रुप बनाना है, जो सेंटर पर बहने रहती है वो अपना एक ग्रुप बनाए, दो बहने काफी है चर्चा के लिए। रात को सोने से पहले चर्चा करें कि आज की मुरली में क्या क्या मुख्य बातें थी, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, महावाक्य क्या था, प्रश्न क्या था, उत्तर क्या था, बीच में कौन से नई बातें थी। चर्चा करके आधा घंटा फिर सोना है। जो लोग गृहस्थ में रहते हैं और घर के एक से ज्यादा लोग ज्ञान में चलते हैं, वो भी यदि युगल है तो युगल बैठ कर ज्ञान की चर्चा करे और फिर सो जाए। कुमार है तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करे, कुमारी है तो किसी कुमारी के साथ चर्चा करे, माताएं दो है तो दोनों चर्चा करें। अगर घर में कोई भी ज्ञान में नहीं है, हो सके तो फोन पर चर्चा करें, अगर वो भी नहीं तो बाबा को ही मुरली सुना देना, आपने ये कहा, आपको याद है कि नहीं सुबह आपने क्या कहा। उस दिन हॉस्पिटल में दादी जानकी आई थी एक हफ्ता पहले, और कहा था क्या बाबा को कुछ अपना हालचाल पूछते हो कि नहीं, कि बाबा तुम्हारा सब ठीक चल रहा है कि नहीं परमधाम में, बाबा को भी पूछा करो। नवीनता है मुरली में समझना, मुरली में नवीनता है उसकी गहराई में जाना, मुरली में नवीनता है उनके शब्दों को, अर्थों को, गूढ़ता को समझना। ये नवीनता क्या है इसको समझना, टाइम देना पड़ेगा पर इसके लिए। ऐसे नहीं होगा मुरली सुन ली, सेंटर पर गए, क्लास में बैठे, डायरी खोली, डायरी खोलने के बाद मीठे बच्चे महावाक्य लिखा, प्रश्न लिखा, ऊपर मुंह, फिर उत्तर लिखा, फिर गीत लिखा, फिर डायरी बंद, और फिर बाजू में रखा, और फिर डोलना चालू किया, اور تھوڑی سی جھپکی ادھر ادھر اور ڈولنا چالو ہے اور پھر ایک دم میٹھے میٹھے سکیلدے بچوں پرتی پھر ڈائری واپس لی. دھارنا کے لیے مکھیا سار ایک دم دھیان سے, ابھی نیند پوری ہوئی ہے, ایک دو پھر وردان پھر سلوگن پھر ڈائری بند کی اور ڈائری بازو میں رکھ دی. ابھی کل ملیں گے ڈائری سے کہا اور پھر سینٹر سے باہر چپل پہنتے پہنتے مہاواکیہ غائب اڑ گیا. گھر پہنچتے پہنچتے پرشن اتر کھو گیا. ناشتہ بناتے بناتے دھارنا کے لیے مکھیا سار غائب. ناشتہ کھاتے کھاتے وردان کھو گیا. آفس میں ڈیوٹی پر جاتے جاتے سلوگن کھو گیا. اور شام ہوتے ہوتے کسی نے پوچھا آج کی مرلی کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی. کیا تھی وہ مت پوچھو, بس ایک بار کہہ دیا نا اچھی تھی, بس پہلے تو آتے نہیں اور پھر پوچھتے ہو مرلی میں کیا تھا. بیٹ بلینک, کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا, چنتن لانا پڑے گا, منن لانا پڑے گا, چرچا لانی پڑے گی, گہرائی میں جانا پڑے گا, کچھ ٹاپکس نکالنے پڑیں گے, سوچنا پڑے گا, کچھ نئے آرٹیکلس لکھنے پڑیں گے. ٹاپک نکالو اور لکھو, کچھ کرنا پڑے گا, چاہے سننے والے ہیں یا سنانے والے ہیں دونوں کو. تو دوسری نوینتا مرلی میں, تیسری نوینتا ہے بھوجن میں. نوینتا بھوجن انانیہ بھاؤ سے سویکار کیا جائے, کمپلینٹ کے ساتھ نہیں, ڈسپلیجر کے ساتھ نہیں, دکھ کے ساتھ نہیں, اس میں یہ کم ہے اس میں وہ کم ہے, یہ ٹھیک نہیں بنا وہ ٹھیک نہیں بنا. کرودھ میں بھوجن کرنا ارتھات نان ویج کھانا, آگ ہے اندر ایسا کہا جاتا ہے بھکتی مارگ میں. کمپلینٹ کے ساتھ کھانا, ارے جو ملا ہے اس کے لیے دھنیواد کا بھاؤ تو دور پر پتھر توڑ رہے ہیں, کٹھور پتھر بھوجن کرتے کرتے, یا تو مر مر کے کھا رہے ہیں, دکھی ہو کے کھا رہے ہیں. بھوجن میں گئے اور ہمارے پسند کا بھوجن ہے ہی نہیں, بھوجن دیکھتے ہی بھوک ختم. کیوں ختم؟ کیونکہ پسند کا نہیں ہے. تیسری دھارنا, تیسری نوینتا ہے بھوجن. انانیہ بھاؤ سے پریم سے خوشی سے دھنیواد دیتے ہوئے اسے سویکار کرنا, بھوگ لگا کر سویکار کرنا. بھکتی مارگ میں بھکت کتنے انانیہ بھاؤ سے بھوجن سویکار کرتے ہیں. بھکتی مارگ میں جب پرساد لینے جاتے ہیں تو کیسا لیتے ہیں پرساد؟ دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہیں. اور گیان مارگ میں ٹولی لینے کے لیے ایک ہاتھ سامنے کرتے ہیں, آدھی ٹولی نیچے گرتی ہے. اچھی امپرومنٹ ہے نا. تب اتنا دھیان کہ دونوں ہاتھوں کو سامنے کیا جاتا ہے. اور گیانی آتمائیں برہمن آتمائیں پرساد کا بھی کتنا مہتو ہے ان کو, پرسادم. بہت سارا تھالی میں لے لو اور جھوٹا چھوڑ دو. بوجھ اس بھوجن میں بھی نوینتا لانا. اور بھوجن میں نوینتا ہے مون. برہما بابا کا ادھارن ہے, بابا بھوجن کر رہے ہیں, ادھر سے کنج دادی آتی ہے اور اتنی خوشی میں ہے. اور کنج دادی انوبھو سناتی تھی کہ بابا ہم نے یہ سیوا کی, ہم نے وہ سیوا کی, اس کو گیان سنایا, اس کو گیان سنایا, ایسا کیا ویسا کیا. بابا نے کہا بچی تم نے بابا کو اپنے ساجن سے دور کر دیا, جدا کر دیا, اپنی باتیں سنا سنا کر. دادی نے کہا آئی ایم سوری. کتنی بار دادی نے یہ انوبھو سنایا ہوگا. بھوجن کے چار نیم ہیں. پہلا ہنگر لیس ایٹنگ, بھوک نہیں ہے پر بھی کھا رہے. منشیہ ہی ایک پرانی ایسا ہے जो भूख नहीं होती है फिर भी खाते रहता है। दूसरा ओवर ईटिंग, जितनी भूख है उससे थोड़ा ज्यादा ही खाता है। मनुष्य उतना खाता है जिससे आधा पेट उसका भरता है और आधा डॉक्टर का, बहुत रहम दिल है। इतना खाता है कि आधा पेट डॉक्टर का भी भरता है, ओवर ईटिंग। तीसरा रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, जो भोजन खा रहा है वो टाइप ही रॉन्ग टाइप का है, रजो है, तमो है। और चौथा नियम, जल्दी जल्दी खाना, क्रोध में खाना, दुखी होकर खाना अवॉइड करना। भोजन धीरे धीरे प्रसन्नता से, आनंद से, धन्यवाद देकर, ये चार नियम। उसके बाद में अगली नवीनता है ट्रैफिक कंट्रोल में नवीनता। चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें नवीनता लाना है। गीत बजता है 3 मिनट, उस 3 मिनट में कुछ करना है, कुछ अपना टाइम टेबल बनाना है। 3 मिनट को एक एक मिनट में डिवाइड करना है। पहला मिनट आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा मिनट बाबा से कनेक्शन, और तीसरा मिनट विश्व को सकाश, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये एक उदाहरण हुआ, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो कम से कम ज्ञान की पॉइंट्स को याद कर लेना, आज सुबह की मुरली में क्या था। नवीनता, पांचवी नवीनता है कर्मयोग। कर्म करते करते योग, कर्म में नवीनता, सेवाओं में नवीनता। जैसे पिछले साल शिवरात्रि की थी, इस साल कुछ और किया जाए। जैसे पिछले साल राखी का त्योहार मनाया था, इस साल ऐसा कुछ करें जो आज तक किसी ने नहीं किया। जो पिछली बार प्रोग्राम किया था सेंटर पर या बाहर, इस बार वो वैसा ना हो, हर बार नया हो। पिछली बार जो डेकोरेशन था वो आज वैसा ना हो, हर बार नवीनता हो। पिछली बार जैसा कार्ड छापा था, इस बार वैसा ना हो। कुछ भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए सेवाओं में, हर सेवा नहीं हो, कुछ ना कुछ उसमें नवीनता हो। जिस ढंग से प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, इस बार कुछ और हो। इसके लिए सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर चिंतन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो जो पिछली बार किया था बस वैसे ही करो, वो केवल काम चला रहे हैं। कारोबार कर लिया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, इसने भाषण दिया, उसने भाषण दिया, इसको फूल, उसको फूल, कार्यक्रम पूरा, चलो घर। नवीनता कहां थी? सेवाओं में नवीनता लानी, कर्मयोग में नवीनता लानी, कर्म करते हुए उसकी स्मृति कैसे रही वो नवीनता लानी है, निमित्त भाव में नवीनता लानी है। मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे कराया जा रहा है, मैं करनहार हूं, करावनहार ऊपर बैठा है, मैं केवल और केवल निमित्त हूं। इस निमित्त भाव को, इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग को कूट कूट के भरना है, नहीं तो अहंकार आएगा, हर बात का अहंकार आएगा, हमने ये किया, हमने वो किया। इस संसार में एक बहुत बड़े गायक थे कभी, मोहम्मद रफी, शायद ही उन जैसी आवाज किसी की थी या होगी आज की तारीख तक। उन्होंने एक बार कहा था, यदि खुदा चाहता तो यह आवाज किसी और हलक में डाल सकता था, यदि वो चाहता तो यह आवाज किसी और गले में डाल सकता था, उसने मेरे गले में डाली। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, सारा कर्म उसका है, उसकी कृपा है, उसकी मेहरबानी है, उसकी नेमतें हैं, उपहार है, गिफ्ट है, इसमें मेरी क्या महानता। आज भगवान ने हमें किसी सेवा के लिए निमित्त बनाया, वो चाहता तो किसी और को भी बना सकता था, और हमसे योग्य लोग बैठे थे, ہم سے بدھیمان لوگ بیٹھے تھے, اس کے بعد میں بھی اس کو اس نے ہم کو چنا, یہ ہم پر کرپا ہوئی ہے, اس میں کون سا اہنکار. وسودیش بہن جی کہا کرتے کہ ہم سب نل ہے, اوپر ٹنکی ہے, پانی ٹنکی میں اوپر ہے, اب پانی اس نل سے نکل رہا ہے تو نل کو اہنکار کہ مجھ سے پانی آتا ہے. ارے تم نل ہو کیول, مہانتا تمہاری نہیں ہے, مہانتا اس پانی کی ہے, مہانتا اس ٹنکی سے کیول تم سے نکل رہا ہے. اگر پانی چاہے تو تم سے نکلنا بند کر کے کسی اور سے نکلے. اگر کوئی سمجھے کہ میں ہی بڑا ہوں, ہیڈ ہوں, نمت ہوں, میرے جانے کے بعد کیا ہوگا سب کا, اچھا ہی ہوگا, شاید تم ہی بادہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم اگر چلے جائیں تو کیا ہو جائے گا, سب بند ہو جائے گا. بند نہیں ہوگا, جو دوسرا آئے گا نا شاید تم سے دو گنا اچھا ہوگا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے کس بات کا اہنکار, اس لیے سیواؤں میں نمت بھاؤ, کرم یوگ میں نمت بھاؤ, یہ نمت بھاؤ, یہ نوینتا ہے سیواؤں میں. اگلی نوینتا ہے سمبندھ میں نوینتا, آپسی جو سمبندھ ہے ان میں نوینتا ہو, وہی سمبندھ نہ ہو. ایک ویکتی نے غلطی کر دی, ابھی تک ہماری بدھی میں ہے کہ اس نے غلطی کی, ابھی تک اس کو معافی نہیں کیا ہے. جب بھی اس کو دیکھتے اس کی غلطی اس کے ساتھ دکھائی دیتی ہے. ہر ویکتی بدل رہا ہے, یہ ہم بھول رہے ہیں. جو ویکتی کے بارے میں ہم نے 10 سال پہلے سوچ کے رکھا تھا, آج 10 سال کے بعد جب وہ ملتا ہے ہم سوچتے ہیں وہ ابھی بھی ایسا ہے. ارے ساری دنیا بدل رہی ہے, اس کے وچار بدل گئے, سب کچھ بدل گئے, اور ہم نے ابھی تک اس کی کمزوری پکڑ کے رکھی. جیسے ایک پتی پتنی ہوتے ہیں, وہ کسی پارٹی میں جاتے ہیں, اور پارٹی میں جو پتی ہوتا ہے وہ شراب پی لیتا ہے پہلی بار, آج تک پی نہیں تھی کبھی, اور اتنی زیادہ پی لیتا ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی وہ بدسلوکی زور سے بولتا ہے, ہنگامہ کرتا ہے تھوڑا تھوڑا, اور پھر دونوں واپس گھر آتے, تب تک اس کی نشہ اس کا اتر جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اپنی پتنی کو مجھے معاف کر دو. پتنی کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کرنے والی. وہ بہت منتیں کرتا ہے اور پھر آخر پتنی اسے معاف کر دیتی ہے, ٹھیک ہے میں آج تمہیں معاف کرتی ہوں, اگلی بار سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. پر معاف تو کر دیا پتنی نے, پر پھر تب سے لے کر جیون بھر وہ اس کو سناتی رہی کہ میں نے تمہیں معاف کیا تھا. کوئی بھی بات ہو جاتی ہے, کیسی بھی بات ہو جاتی ہے, وہ برابر وہ پوائنٹ وہاں پر لاتی ہے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی اور میں نے تمہیں معاف کیا تھا. بھوت کی طرح پیچھے پڑی ہے اس کا جیون بھر. معاف کر دیا, اس کی بھی یاد کیوں رہے, وہ بھی دوسروں کو جتلایا تھوڑی جاتا ہے کہ میں نے معاف کیا تھا, میں نے معاف کیا تھا, تم نے غلطی کی تھی میں نے معاف کیا تھا. وہ آخر کہتا ہے اچھا ہوتا کہ تم نے معاف ہی نہیں کیا ہوتا. سمبندھوں میں کٹوتا, سمبندھوں میں ٹکراؤ, سمبندھوں میں کھینچاتان, سمبندھوں میں کڑواہٹ. دو ویکتی ساتھ میں رہتے ہیں, جھگڑا چالو ہے, مون یدھ. وہ ادھر سے آتا ہے, وہ ادھر سے جاتا ہے, وہ ادھر سے آتا ہے, وہ ادھر دیکھتا ہے, بات نہیں کرتے. کولڈ وار. ہمارے او پی ڈی میں ایک ماتا آئی تھی, اس نے کہا مجھے چیسٹ پین ہوتا ہے, چھاتی میں درد, ای سی جی کراؤ, ای سی جی نارمل, اور دوسری ٹیسٹ کراؤ وہ بھی نارمل. کب ہوتا ہے درد, سیڑھیاں چڑھتے ہیں, بھاگتے ہیں. وہ کہتی نہیں نہیں ویسے نہیں, اینجیوگرافی ہو چکی ہے, نارمل ہے, پر درد چالو ہے. ہم نے کہا کب ہوتا ہے یہ درد, جب دوڑتے ہو, بھاگتے ہو, ایکزرشن کرتے ہو. اس نے کہا ویسا کچھ نہیں ہے. ایک ویکتی ہے, جیسے ہی وہ سامنے آ جاتی ہے ادھر درد چالو ہوتا ہے, ایک دم سینے میں, باقی نہیں ہوتا ہے. جیسے وہ آنکھوں کے سامنے آتی ہے ایک دم چیسٹ پین, ہارٹ اٹیک والا, بہت اسکویزنگ, بھینکر درد. ٹھیک کب ہوتا ہے, جیسے وہ چلی جاتی ہے, फिर कुछ देर के बाद ठीक लगता है। अब कौन सी दवा दे इसके लिए, हार्ट की नलियां खोलने की कि एंजियोप्लास्टी करानी है, क्या कराना है? यह दर्द घृणा से उत्पन्न दर्द है, किसी एक आत्मा के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति ऐसी नफरत भरी है हृदय में, ये दर्द है, पीड़ा है, क्रोध है किसी के प्रति। अमेरिका में सबसे महान ऑथर कभी हुए थे डेल कार्नेगी, बहुत सारी किताबें लिखी है। उन्होंने एक बार भाषण दिया रेडियो पर अब्राहम लिंकन पर, और वो भाषण सब जगह प्रसारित हुआ पूरी अमेरिका में, और उनको बड़ी खुशी थी कि मेरा बहुत प्रभुत्व है अब्राहम लिंकन के जीवन पर, कि मैं बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने किताब भी लिखी है द अननोन लिंकन, अब्राहम लिंकन की जीवन कहानी भी लिखी है, और एक बार प्रवचन दिया, और जिस दिन प्रवचन दिया रेडियो पर एक खत आया उनको। उस खत में एक महिला ने लिखा, आपने ये बात गलत बोली, तो आपके प्रवचन में ये गलतियां थी, ऐसा था वैसा था, बहुत सारा लिखा उसने। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, सोचना चाहिए पब्लिक भाषण देने से पहले, इतिहास को ठीक से पढ़ना चाहिए। और जब डेल कार्नेगी ने यह लेटर पढ़ा तो उनको ऐसा क्रोध आया कि मुझे करेक्ट करती है। उन्होंने खतरनाक लेटर लिखा, जहरीला एकदम, उस महिला को जिसने उनको करेक्शन दिए, और वो अपने आप को मास्टर समझते थे अब्राहम लिंकन के जीवन पर। एक भयंकर लेटर लिखा, पर रात हो गई थी, सोचा कल पोस्ट करूंगा, तकिया के नीचे रख दिया। दूसरे दिन उठे और पोस्ट करने गए तो सोचा एक बार पढ़ तो लूं, पढ़ा तो देखा, अरे बाप रे, ये थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया। सोचा कि दूसरा लिखता हूं, दूसरा लिखा, पोस्ट करने गए, सोचा अभी थोड़ा रुक जाता हूं, देखता हूं शाम तक, उसको तकिया के नीचे सेकंड लेटर। दूसरे दिन उसको पोस्ट करने गए, पढ़ा तो कहा कि ये भी थोड़ा ज्यादा ही है, इतनी भी कोई गलती नहीं की उसने कि इतना मैं उसको लिख दूं। सोचा तीसरा लेटर लिखता हूं, तीसरा लेटर लिखा, फिर सोचा अभी दो दिन में ये हुआ तो और थोड़ा देखता हूं क्या होता है। एक दिन और इंतजार किया और फिर पढ़ा, ये भी थोड़ा ज्यादा ही है। 7 दिन तक 7 लेटर लिखे, पोस्ट कोई भी नहीं किया, और 8वें दिन अंतिम लेटर लिखा, उसको कहा, डियर सिस्टर, आपने जो गलतियां बताई बिल्कुल करेक्ट है, सही में मुझे सुधार करना चाहिए, बहुत ही अच्छा किया आपने जो मुझे बता दिया, पहला लेटर क्या था और ये लेटर क्या था, बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे सिखाया, नहीं तो मुझे कौन सिखाता, आपके वजह से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर वो महिला उनसे मिलने आई और उन्होंने लिखा, वो मेरी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गई तब से, ये परिणाम हुआ। पहला लेटर भेजते तो क्या होता, क्रोध था उसमें, आग थी आग, बदला था। सोचो हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं 7 डेज का कोर्स, और वो हमको ही सिखाने लगे तो हम क्या कहेंगे, ठीक है ठीक है, या ये कहेंगे जाओ, तुमको, तुम इस झाड़ के ही नहीं हो, जाओ यहां से, तुम हमारे धर्म के नहीं हो, तुम देवी देवता बनने वाले जैसे लक्षण तुम में नहीं है। धैर्य, तो संबंधों में मिठास, संबंधों में सहयोग, संबंधों में प्रेम, संबंधों में सम्मान, संबंधों में सहन करना पड़ेगा एक व्यक्ति को। इंग्लिश में कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है, अहंकार के युद्ध में जो विजेता है वो पराजित है। जिसने अपने अहंकार को सिद्ध कर लिया कि मैं राइट हूं, वास्तव में वो हार गया है। इन द बैटल ऑफ ईगो, इन द वॉर ऑफ ईगो, द विनर इज लूजर। तो संबंध में नवीनता लानी है। अगला है चार्ट लिखने में नवीनता, रात्रि में चार्ट लिखने में नवीनता। जो एक बार चार्ट आ गया बस वही वही भर रहे हैं रोज, अमृत वेला इतना परसेंट, वो इतना परसेंट, नया चार्ट बनाना है रोज की मुरली से, मुरली सुनते सुनते ही सुबह सुबह चार्ट बना देना और रात को फिर उसको देखना, प्रश्न कितना याद किया, क्रोध तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं की, कुदृष्टि तो नहीं गई, अपशब्द तो नहीं बोला। रोज की मुरली से, मुरली सुनते सुनते छोटा सा चार्ट बना लेना, हर दिन नया चार्ट हो। और लास्ट बात, सोने की विधि, जिस तरह हम सोते हैं वो ऐसा हो कि नींद आ जाए बहुत अच्छी सी। और इसमें एक विधि है योग निद्रा। योग निद्रा पर पांडव भवन में कभी क्लास कराई थी, एक फुल बड़ी क्लास, योग निद्रा क्या है। योग निद्रा एक विधि है सोने की, जिसमें सात आठ स्टेजेस है। संसार में लोग सिखाते हैं इसको, साइंस में, मेडिकल साइंस में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं इसके ऊपर। फर्स्ट स्टेप है उसमें लेट जाना, अगली स्टेप है शरीर को शिथिल छोड़ देना, शवासन। तीसरी स्टेज है रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, जैसे सोए हैं एक एक चीज देखना, अंगूठा देखना, फिर उंगलियां देखना, रिलैक्स, कलई, आर्म्स, कंधे, पैर, राइट ऊपर तक, लेफ्ट ऊपर तक, पेट, फीट, छाती, गला, नाक, कान, एक 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 का वर्णन करना और एक एक को रिलैक्स छोड़ते जाना। ये तीसरी स्टेज। अगली स्टेज श्वासों पर केंद्रित करना, श्वास आ रही है जा रही है। अगली स्टेज कोई एक संकल्प लेना, जैसे हम संकल्प ले सकते हैं ज्ञान योग के, ये तो संसार के लोग सिखाते हैं पर हम इसको ज्ञान युक्त तो बना सकते हैं। कोई एक संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निर्लेप हूं, निर्मोही हूं, कोई भी स्वमान। और फिर उसके बाद में अगला है विजुअलाइजेशन, उसको देखना, मैं फरिश्ता हूं तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे संकल्प करते 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 सो जाना, इसको कहते हैं योग निद्रा। इस पर साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। इसमें तो हम खाली सो जा रहे हैं, परंतु वो लोग, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, 15 मिनट में 4 घंटे की नींद हो जाती है, इसको पावर नैप कहते हैं। बहुत कम समय है, पूरा दिन व्यस्त है, आधा घंटा खाली है हमारे पास दोपहर में, उस आधा घंटा में योग निद्रा कर लेना, अर्थात उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे 2 घंटे की नींद पूरी हो गई, क्योंकि सोए नहीं थे, अर्ध निद्रा थी, आवाजें आ रही थी बाहर जो हो रही है, पर फिर भी सोए थे। और हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं है, आराम की आवश्यकता है। और आराम लेने की एक विधि नींद है। यदि वही आराम किसी और चीज से लिया जाए तो नींद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए ब्रह्मा बाबा का दिखाया है, कुटिया में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, आधी रात को कोई भी आता है, आवाज होती है तो बाबा उठ जाते हैं, क्या है बच्ची, जैसे सोए नहीं थे, जैसे जाग ही रहे थे पूरी रात। और ऐसा भी नहीं कि नींद नहीं हो रही थी, नींद तो हो रही थी, आराम हो रहा था। निद्रा अनिद्रा इसको समझना है। और योग निद्रा पर कॉमेंट्रीज भी बनाई हुई है, संसार के लोगों ने बना के रखी है। एक प्रवचन हमने देखा था जिसमें एक व्यक्ति, एक स्वामी जी, कई सारे लोग सभा में बैठे हुए अपना अपना आसन पर, और सबको सामूहिक योग निद्रा करा रहे, नींद नहीं, आधे घंटे की, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड में वापस शरीर की चेतना को वापस लाना और फिर उठ जाना, ऐसा करते जैसे शवासन करते हैं योग आसन में, उसका एक भाग है योग निद्रा का शवासन। तो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती है जिसमें हमारी नींद अच्छी हो, फ्रेश हो, ठीक हो, योगी जीवन के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, दो चीजों की ही सेटिंग चाहिए, भोजन और नींद, बस। इसको ठीक कर लिया सब ठीक हो जाएगा। तो कितनी बातें हो गई, सबसे पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा भोजन, चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, पांचवा कर्मयोग या सेवा, छठवा संबंध, सातवा चाट और आठवा सोने की विधि। तो ब्राह्मण जीवन के ये अष्ट कर्म है जिसमें क्या करना है, नवीनता लानी है। उसी उसी ढंग से वो होते नहीं रहे, नवीनता, पत्थर तोड़ना बंद, कमाई कर रहे हैं बहुत अच्छा, पर कमाई से भी आगे जाना है। उसके आगे की स्टेज है खुशी खुशी से, उमंग उत्साह से ये सारी चीजें करना। तो संक्षिप्त में ये आज की मुरली थी, ओम शांति।